namo siddhāyam
namo siddhāyam
namo āyuryānam
namo āyuryānam
namo uvajjhāyānam
namo uvajjhāyānam
namo lōye sarvasāhūnam Esu panch namo yaro Sattva pava pranashmano Mangalanam cha sarveshin Padhamam bhavai mangalam Chattari Mangalam
Chattari Mangalam
Arahanta Mangalam
Arahanta Mangalam
Siddha Mangalam
Siddha Mangalam
Sahu Mangalam
Sahu Mangalam
Kevali Pannato Dhammo Mangalam Chattari Loguttama
Chattari Loguttama
Arahanta Loguttama
Arahanta Loguttama
Siddha Loguttama
Siddha Loguttama
Sahu Loguttama
Sahu Loguttama
Kevali Pannato Dhammo Loguttama Chattari Saranam Pavajjami
Chattari Saranam Pavajjami
Arahanta Saranam Pavajjami
Arahanta Saranam Pavajjami
Siddha Saranam Pavajjami Sahu Saranam Pavajjami
Sahu Saranam Pavajjami
Kevali Pannato Dhammo Saranam Pavajjami
Kevali Pannato Dhammo Saranam Pavajjami
Param Pujya Devadidev Tirthankar Shri Shyamtinath Bhagavan Ki झिलवाड़ी माता की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मिलेगा पंच महागुरु भक्ति का एक
मन्यनाइंद सूर्य धैर्य पंचकल्याणसो
Bye.
इच्छामिवन्ते पञ्च महागुरुभक्तिकौ सग्रुकौ तस्यालोचयौ अट्ठ महापाणिभिः संयुक्ताणम् अर्हन्ताणम् अट्ठ गुणसम्पन्नानम् उड्लूयमक्षयम् निपैठ्यानम् सिद्धानम् अट्ठ पवयणमाउ संयुक्ताणम् आयुर्याण आयारादिसुजनानो उपदेशयानम् उपध्यायानम् तिरयण गुण पालनयानम् सद्वसाहूणम् मुक्षुकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कम्मखौ गोहिलाहौ सुवैगमन् समाहि मरणं जिणौ सम्पत्तिहौ मज्जन् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमङ्गयिं तत्ते वोच्छामि समयपाहुर मिणमोऽसु यकीदलीभणिः व्यवहार न कहता है कि शरीर और जीव एक है, पर निश्चय न का कथन है कि जीव और देह ये कभी एक पदार्थ नहीं बन सकते, ये दो भिन्न पदार्थ। इनमन्नं जीवादि देहं पुग्गलमयं ध्वनि तुमणि मन्नरिः सन्तु दूवन् विदुमै केवली भयवम्। जीव से भिन्न इस पुद्गल में शरीर की स्तुति करके मुनि ऐसा मान लेते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की है, पर निश्चय से शरीर के स्तवन से आत्मा की स्थिति संभव नहीं है। तन्निच्छयेन जिज्ञरे न शरीर गुणा ही के होंत केवलिनो केवलि गुणे थुणरिजो सो तच्छं केवलिं थुणरि। निश्चय में ये बात उचित नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं है, और केवली के गुणों की यदि स्तुति की जाती है तब वास्तव में वो केवली की स्तुति होती है। अब फिर शंका होती है कि यदि शरीर के गुणों की स्तुति भगवान के गुणों की स्तुति नहीं है तो इसका कोई दृष्टांत दीजिए ताकि बात और स्पष्ट हो जाए। विद्वानों का कहना था कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी दृष्टांत शिरोमणि हुए हैं। நயரம்மி வண்ணி தேஜ நவிரண்டோ வண்ணனா கதாஹூதி தேஹி குணே துப்பந்தே ந கேவலி குணா துதாஹுந்தி.
जिस प्रकार नगर का वर्णन करने पर राजा का वर्णन नहीं होता, उसी प्रकार भगवान के शरीर का वर्णन करने पर केवली के गुणों का वर्णन नहीं होता। इसका उदाहरण दिया है, किसी नगर का वर्णन कर रहे हैं तो आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो इस वर्णन में कहीं राजा की बात आ रही है। क्या वर्णन है?
प्राकार कवलितांबर मुकुवन राजी निगीर्ण भूमितलन तिब्बती वही नगर मिदम परिखावलयेन पातालम।
परकोटे से जिसने आकाश को छुआ है, यानी इतना ऊंचा परकोटा है, बाउंड्री वॉल इतनी ऊंची है कि आकाश को छुआ है, और उपवन राजी निगीर्ण भूमि तलम, और जिसका सारा भूमि तल उपवनों से बाग बगीचों से निगल लिया गया है, अर्थात जिस नगरी में चारों तरफ बाग बगीचे हैं, इदं नगरम परिखा वलयेन पातालम पिबति इव ही। बोलेगी ये नगर ऐसा सुंदर नगर है कि इसके चारों तरफ जो खाइयां हैं, शत्रुओं का प्रवेश न हो इसलिए पहले नगरों के चारों ओर खाइयां होती थी, तो वो खाइयां इतनी गहरी हैं कि वो पाताल को पी रही हैं, अर्थात नरकों को छू रही है। अब इस वर्णन में कहीं राजा का वर्णन हुआ? नहीं हुआ। इसी प्रकार नित्यम विकार सुस्थित सर्वांगम पूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमेव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परंजयति। जिनेन्द्र भगवान का रूप सर्वोत्कृष्ट है। कैसा है? नित्यम हमेशा अविकार सुस्थित सर्वांगम निर्विकार रूप से सर्वांग में एक शांत छवि देखने को मिलती है, और अपूर्व सहज लावण्य अद्भुत अपूर्व अद्वितीय सहज लावण्य उनके शरीर की सुंदरता, और उस सुंदरता के साथ कांति, कांति युक्त सौंदर्य को लावण्य कहते हैं, और केवल सौंदर्य को रूप कहते हैं। तो भगवान का सौंदर्य कैसा है? कांति युक्त है। और कैसा है भगवान का रूप? समुद्रम एव अक्षोभम, प्रशांत महासागर अथवा किसी भी शांत समुद्र के समान। अमावस्या के समय समुद्र एकदम शांत होता है, पूर्णिमा के समय लहरें उठती हैं, तो अमावस के उस शांत सागर के समान भगवान की छवि है। वो छवि सर्वोत्कृष्ट है। इति शरीरे स्तूयमाने पि, इस प्रकार शरीर की स्तुति करने पर भी तीर्थंकर केवली पुरुषस्य तदधिष्ठातृत्वेपि सुस्थित सर्वांगत्व लावण्यादि गुणाभावात् स्तवन न स्यात्। इतनी स्तुति करने के बावजूद केवली भगवान की जो आत्मा है वो भले उस शरीर में स्थित है, लेकिन शरीर के गुण आत्मा में न होने के कारण केवली भगवान की आत्मा का स्तवन नहीं हुआ, उनके रूप का स्तवन हो गया, बहिरंग रूप का, लेकिन उनके आत्मा का स्तवन नहीं हुआ। तो अब आचार्य कुंदकुम स्वामी से निवेदन है कि फिर आप ही बताइए कि निश्चय स्तुति कैसी होती है, भगवान की स्तुति कैसी होती है, ये तो ठीक है व्यवहार स्तुति हुई, तो ये व्यवहार स्तुति सर्वथा अयोग्य भी नहीं है, इसको अपन एकदम अनुचित भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ तो संबंध है ना। अब व्यवहार जो होता है वो संबंध आश्रित होता है, और निश्चय जो होता है संबंध रहित होता है। तो ये संबंध के आश्रय से अगर स्तुति की जाए, तो क्योंकि भगवान की आत्मा अभी शरीर से संबंध रख रही है, इसलिए शरीर की स्तुति करने पर व्यवहार से भगवान का स्तवन माना जाएगा। व्यवहार निराधार नहीं है, क्या कहा? व्यवहार जो है वो निराधार नहीं है, इसलिए उसको सर्वथा असत्य नहीं कहते, वो निश्चय की अपेक्षा से असत्य है, ठीक है ना। निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार असत्य है, व्यवहार अपने आप में सर्वथा असत्य नहीं है, क्योंकि ये जो श्लोक आया है नित्यम अविकार सुस्थित, ये बिल्कुल झूठी बात हो ऐसी बात तो नहीं है। भगवान की छवि को देखो तो बिल्कुल निर्विकार शांत समुद्र के समान स्थिर स्पष्ट दिखाई देती है, इसलिए सर्वथा मिथ्या नहीं है। लेकिन निश्चय से देखा जाए तो इस स्तुति में भगवान की आत्मा का गुणगान नहीं है, इसलिए ये स्तुति यथार्थ नहीं है। अथ निश्चय स्तुति माह, अब निश्चय स्तुति को बतलाते हैं, तत्र उसमें विभाग कर करके बतलाएंगे। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष परिहारेण तावत, अब इसमें जानने योग्य और जानने वाला, इनके मिश्रण से जो दोष उत्पन्न होता है उसका निराकरण करते हुए कहते हैं, जो इंद्रिय जनिता नान सहावाधियम मुणदि आदम तंखल जिदिंदियंते भणंति जीर्णिच्छिदा साहु, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके आत्मा को ज्ञान स्वभाव के कारण अधिक मानते हैं, अधिक का अर्थ है यहाँ पर कि बाकी सब में जो कुछ नहीं है आत्मा में वो है, और वो क्या है? ज्ञान स्वभाव। ये द्रव्येंद्रियों में ज्ञान स्वभाव कहाँ है? ये तो पुद्गल की रचना है, और परमाणुओं से रची हुई है इंद्रियां, ये स्पर्शन इंद्रिय सर्वांग में है, चक्षुर इंद्रिय इतने हिस्से में है, कर्ण इंद्रिय अपने स्थान पर है, जिह्वा इंद्रिय नासा इंद्रिय, ये सारी सारी पुद्गल की रचनाएं हैं, आत्म प्रदेश क्यों नहीं है, है ना। तो इंद्रियों को जीत कर जो अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव के कारण सबसे भिन्न मानते हैं, वो निश्चय से जितेंद्रिय होते हैं। जिनेन्द्र भगवान जितेंद्रिय है, ये उनकी निश्चय स्थिति होगी। ऐसा कौन कहते हैं? तो निश्चय के जानने वाले साधु ऐसा कहते हैं। अब भाव्य भावक संकर दोष परिहारेण निश्चय स्तुतिमा, अब भाव्य और भावक इनका जो दोष है, इनके मिश्रण से होने वाला जो दोष है उसको दूर करते हुए कहते हैं, जो मोहंत जिणिता नान सहावाधियम मुणै आदम तम जिद मोहन साहम परमठ वियाणयाविंती, जो मोह को जीत कर, पहले क्या कहा था, इंद्रियों को जीत कर, अब जो मोह को जीत कर अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव के कारण सबसे भिन्न जानते हैं, वो जितमोह साधु है, ऐसा परमार्थ के ज्ञाता महामुनि कहते हैं। तो मोह को जीतने वाले जिनेन्द्र भगवान हैं, ये उनकी निश्चय स्तुति होगी। अब इसमें भावक और भाव्य, भावक का अर्थ होता है भाव कराने वाला और भाव्य यानी जिसमें भाव कराएगा। तो मूल कर्म जो है वो भावक है और आत्मा जो है वो भाव्य है, लेकिन जो उस मोह से प्रभावित न होकर उस पर विजय प्राप्त करके मोह भाव को आत्मा में होने ही नहीं देते, वे साधु मोह विजेता है। जिनेंद्र भगवान जित मोह है ये उनकी निश्चय स्तुति होगी। अब भाव्य और भावक भाव का अभाव हो जाने से क्या होता है, शब्दों से घबराना मत। भाव्य का अर्थ है आत्मा और भावक का अर्थ है मोह कर्म। इन दोनों का अभाव होने पर क्या होता है, तो बोलते हैं जिद मोहस दुजैया खीणो मोह हविज साहुस तैया हु खीण मोह भण्ड दिजो निक्षय विदुही। मोह को जितने जीतने वाले मुनि के जब उस कर्म के परमाणुओं का भी अस्तित्व नहीं रह जाता, अर्थात पूर्णतः मोह का क्षय हो चुकता है, तब वो क्षीण मोह कहलाते हैं, ऐसा निश्चय वेत्ताओं ने कहा है।
एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चयान् नुस्तोत्रं व्यवहारतोस्ति पुरुषः नुस्तोत्रं व्यवहारतोस्ति वपुषः स्तुत्यानतत्तत्वतः स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चित् स्तुत्यैव सैवं भवे नातस्तीर्थकरस्तवोत्तर बला देतत्वमात्मांगयो।
व्यवहार से शरीर और आत्मा में एकता है लेकिन निश्चय से नहीं है, इसलिए शरीर की स्तुति द्वारा व्यवहार से आत्मा की स्तुति मानी जाती है, निश्चय से आत्मा की स्तुति शरीर की स्तुति से नहीं होती। आत्मा की स्तुति निश्चय से तो आत्मा की स्तुति करने पर ही हो सकती है। इसलिए ये जो तुम्हारा प्रश्न था कि यदि शरीर और आत्मा एक नहीं है तो फिर वासुपूज्य भगवान लाल थे इत्यादि जो स्तुति के वचन हैं वो सब झूठे होंगे, तो आचार्य कहते हैं झूठे नहीं, व्यवहार से सच्चे हैं निश्चय से झूठे हैं। अब इसके बाद एक बड़ा सुंदर कलश लिखा कि ये व्यवहार और निश्चय से जो स्तुति की चर्चा निकली थी इसको ही अगर समझ लिया जाए तो आत्मा प्रकाशित हो सकती है। कैसे, तो बोलते हैं इति परिचित तत्वी रात्मकायैकतायां नय विभजन युक्त्या त्यंत मुच्छादितायां अवतरतिन बोधो बोधमेवाद्य कस्य स्वरस रभस कृष्ट प्रस्फुटन्नेक एव। इस प्रकार तत्वों से परिचित जो ज्ञानी जन है उनके द्वारा नयों के विभाग की युक्ति द्वारा, अर्थात ज्ञानी जनों ने जो नयों के विभाग के उपाय के माध्यम से आत्मा और शरीर की एकता का खंडन कर दिया, आत्मा और शरीर एक नहीं है ये सिद्ध कर दिया, ऐसी सिद्धि हो जाने पर ये बात जिसके सामने प्रकट की गई है ऐसा कौन होगा जिसका ज्ञान आज ज्ञान न बन जाए। क्या समझे, ज्ञान तो सबके पास है लेकिन अभी वो सही ज्ञान नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि नयों के विभाग का उपाय करके व्यवहार और निश्चय से भगवान की स्तुति आदि उदाहरणों से स्पष्ट बतलाकर, क्या बतलाकर, कि शरीर और आत्मा निश्चय से एक नहीं है, व्यवहार से इनको एक कहा जाता है, ऐसा स्पष्टीकरण हो जाने पर आज किसका ज्ञान ध्यान न होगा। अर्थात आज वो जो ज्ञान है वो ज्ञान कहलाने लायक हो गया। ये स्पष्ट हो गया ना कि आत्मा और शरीर एक नहीं है। तो अब ये जो ज्ञान अपने पास है, जिसके पास ये स्पष्टीकरण है कि निश्चय से आत्मा और शरीर एक नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान कहलाने लायक हो गया। प्रतिबुद्धोक्ति निराशा, इस प्रकार जो अज्ञानी जीव ने शरीर और आत्मा को एक बतलाने के लिए तर्कणा दी थी, उसका निराकरण हो जाता है। इसके बाद आचार्य कहते हैं कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। चैडाला में भी जो पंक्ति कही गई है उसी बात को यहां पर भी कह रहे हैं कि वो ज्ञान ही एक अभूतपूर्व निधि है अपनी। कैसे? फिर त्याग वगैरह कोई चीज नहीं है क्या? अगर आप ज्ञान को इतना महत्व दे रहे हो तो फिर क्या त्याग का कोई मूल्य नहीं है? तो आचार्य महाराज इस प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। शब्दे भावे जम्मा पच्चखाई परे तिनादूण तम्मा पच्चखाण नाणम नियमा मुने यव्वम। त्यागने योग्य पदार्थों को त्यागने योग्य जानकर छोड़ता है, इसलिए जानना ही त्याग है। क्या बात! ज्ञान ही त्याग है। क्यों? त्यागने योग्य को त्यागने योग्य जानकर ही छोड़ता है, जाने बिना नहीं छोड़ता, इसलिए वो ज्ञान ही त्याग है। कारण में कार्य का उपचार करके कथन, किस कारण से उसने त्यागा, उसको समझ में आया कि ये त्यागने योग्य है, इस कारण से त्यागा, तो वो समझ त्याग का कारण बनी कि नहीं? बस इसीलिए वो समझ ही त्याग है। फिर कोई प्रश्न करता है कि इसको समझाने के लिए आप कोई उदाहरण दो, क्योंकि उदाहरण सुनने में बहुत आनंद आता है। गुरुओं के पास अच्छे अच्छे उदाहरण भी मिल जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। देखो, इस वर्णन में आप एक बात विचार करो। अभी अपन ने शरीर और आत्मा के भेद को निश्चय नए से व्यवहार नए की अपेक्षा से, तो अभेद था, निश्चय नए की अपेक्षा से समझ लिया कि भेद है। तो अब वो जो पुराना मोह था वो कैसे ठहर सकता है? सोचने की बात है। जो पुराना मोह था अब वो आपको नहीं छू सकता, ये समझ लेने के बाद उसका हम एक उदाहरण दे रहे हैं अपनी तरफ से। फिर अपन आचार्य कुनकुन स्वामी त्याग का जो दृष्टांत देंगे उसको अपन फिर देखते हैं 35वीं गाथा में। अभी 34 गाथा हुई है, लेकिन बीच में हम अपनी एक बात आपसे कहना चाह रहे हैं कि एक बार ये समझ में आ गया कि मैं ये नहीं हूं, और अंदर से ये श्रद्धा हो गई कि मैं ये नहीं हूं, तो बताइए क्या वो पहले वाली आकुलता हो सकती है जिसको मैं मानने के कारण होती थी? हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो फिर इस शरीर से जितने भी संबंध जुड़े हुए हैं, अर्थात जितने भी सगे संबंधियों का संबंध है, उनके प्रति राग तो रहेगा लेकिन अब मोह नहीं रहेगा। क्या अंतर है इसमें? राग तो तब तक रहेगा जब तक कषायों का उदय है, लेकिन मोह अर्थात ब्रह्म, जो तात्विक ब्रह्म होता है उसको मोह कहते हैं। कि जो अंदर से एक फीलिंग रहती है, कि अंदर से एक मान्यता रहती है कि ये इतने लोग हमारे हैं, ये हमारा खून है, ये जो मान्यता रहती है। अब ये जो आस्था है, ये शरीर को आत्मा से भिन्न जान लेने के बाद नियम से टूट जाती है। हमारा खून क्या आत्मा का खून होता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इसके लिए हम एक दृष्टांत दे रहे हैं आपको कि अगर आपके घर के साथ लगे हुए बहुत सारे घर हैं और वहां से सातवें घर में बघार जल जाए तो आपको तकलीफ होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि वो आपका घर नहीं है और न पड़ोस का। तो सोचो, ये शरीर अपना पड़ोसी है और इसके रिश्तेदार पड़ोसी के भी पड़ोसी है, तो अगर कहीं रिश्तेदारों में कोई ऐसी आकुलता की स्थिति बनती है तो फिर उनके रागवश या उनके मोहवश जो कष्ट होना चाहिए वो कष्ट अब हो नहीं सकता। जहां जो कुछ हो रहा है, जो भी दुख है, वो सब अपनी धारणाओं के कारण होते हैं, किसी दूसरे के कारण, किसी वातावरण के कारण, किसी परिस्थिति के कारण, शरीर के कारण, किसी अन्य के कारण नहीं होते, सिर्फ अपनी मान्यताओं के कारण होते। कितना बड़ा बोझ उतर गया सिर से। जो घर था वो भी मैं नहीं था, पर फिर भी घर में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो रिपेयरिंग वगैरह कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? इसी प्रकार शरीर है वो मैं नहीं हूं, लेकिन कभी पेट खाली हो जाता है या सुधा आदि वेदना है इसके निमित्त से उत्पन्न होती है, तो फिर उसकी पूर्ति के लिए कुछ उपाय कर लिया जाता है। फिर जो पड़ोसी है, एकदम लगे हुए पड़ोसी, यानी अपने पुत्र संबंधी आदि जो एकदम घर के परिवार में ही रहने वाले हैं, उनके भी दुख दर्दों में अपन बंटवारा थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अपन बांट लेते हैं उनके सुख दुखों को। और जो और दूर के लोग हैं उनके प्रति भी सद्व्यवहार रखते हैं, लेकिन कभी भी उस बघार की दुर्गंध जो जल गया है, सातवें घर से आगे जो जल गया है, उसकी दुर्गंध अपने को आकुलित नहीं करती। इसी प्रकार ज्ञानी जीव सब कुछ देखता हुआ जानता हुआ भी अंतरंग से ये विश्वास रखता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब उन उन द्रव्यों का परिणाम है। मैं अगर राग द्वेष मोह को प्राप्त होऊंगा तो आकुलित होऊंगा, अन्यथा मेरा स्वभाव निराकुल है, उनका स्वभाव भी निराकुल है। जहां जहां आकुलता हो रही है, मान लो सातवें घर में आकुलता हो रही है, आपके किसी रिश्तेदार के अंदर कोई तकलीफ हो रही है, तो उस तकलीफ का कारण भी, उसका निमित्त तो कर्म का उदय है, लेकिन उसका उपादान उस जीव की भूल है। क्या भूल है जीव की? कि उसने ये मान करके रखा है कि ऐसा हो तो सुख और ऐसा हो तो दुख। तो सुख और दुख जो कुछ होते हैं वो क्या वास्तव में होते हैं या मानता है तो होते हैं? मानता है तो होते हैं। देखो, राई के दाने जब चुभते थे और उसमें सुकुमाल दुख मानते थे तो वो हिलते थे, बैठ नहीं पाते थे, तो मान्यता से ही तो दुख था ना। और जब शालिनी के दांत चुभते थे तब दुखी नहीं हुए तो उस समय दुख क्यों नहीं हुआ? क्या राई के दाने से कम होती है चुभन शालिनी के दांत में? नियम से अधिक चुभन है। तो बताइए, चुभन दोनों में है, दुख का कारण क्या है? अगर ऐसा माने कि राय के दाने की चुभन दुख का कारण है और शालिनी के दांत की चुभन दुख का कारण नहीं है, तो इसको कहेंगे कारण विपर्यास। वास्तव में चुभन अपने आप में न तो सुख का कारण है न दुख का कारण है, पर उस चुभन में कषाय के कारण जो अपनी परिणति होती है, परिस्थिति दुख नहीं देती, मनस्थिति दुखदायी होती है। तो श्यालनी ने जब उनके पैरों को 3 दिन तक के खाया, अब वो सरसों के जो दाने थे, राई के दाने, वो तो 30 मिनट भी नहीं चुभे होंगे, उन हो सकता है 3 मिनट बैठे हो वहां पर उस आसन पर, पता नहीं, लेकिन 3 दिन तक श्यालनी के दांत तो बराबर चुभ रहे थे, तो भी आकुलता नहीं हुई। तो इसका उत्तर यह है कि जब तक जीव मोह के वशीभूत होता है तब तक दुखी रहता है, जब मोह को वश में कर लेता है तो सुखी हो जाता है। तो सुख का कारण चुभन नहीं, दुख का कारण चुभन नहीं, कारण अपने भीतर। हर परिस्थिति न्यूट्रल है, वो न सुखदायी है न दुखदायी है, अपनी मान्यता ही सुख और दुख देने वाली है। किसी गजल में हमने एक बीच में एक मोनोलॉग लिखा था, एक डायलॉग जैसा होता है ना, मुसीबत में अफसोस करने वाले शख्स हर कदम पे मिल जाते हैं, जमीन पे गमों में मुस्काने वाले कम नजर आते हैं, खुशी हो या दिल का दर्द ये सिर्फ नजरिए का अंजाम है, जिसकी आंखों में मुस्कान है वो इंसानों में इंसान है। इस समय सार से यही ग्रहण करना है, समय सार का स्वाध्याय करके फिर वही पुरानी आदत बनाए रखना, ये भी अपना चयन है, अपने हाथ में। आप चाहो तो पहले जैसे रहो और चाहो तो बदल जाओ और जीवन को प्रकाशमय बना लो, आपके हाथ में है, कुछ भी किसी दूसरे के हाथ में नहीं, सब कुछ आपके हाथ में है। कितनी बड़ी स्वतंत्रता है आपके पास, इसी क्षण इसी स्थान पर आप इसी वक्त स्वतंत्र हैं। जनते रुचेर तम ही कुछ जाहो, रहन सार की वो पंक्ति याद करो, जो रुचे सो करो। अब आचार्य कुनकुन स्वामी दृष्टांत दे रहे हैं कि ज्ञान और त्याग को आप एक कह रहे हैं, उसका कोई दृष्टांत आचार्य कहते हैं, जह नाम को भी पुरिसु परदव्वमिणंति ज्ञानिदं चयति तस्वे पर भावे नाउण विमचरे नाणी। जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी वस्तु को जब ये जान लेता है कि ये तो मेरी नहीं है तो उसी समय छोड़ देता है, बस उसी प्रकार ज्ञानी जीव आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है उसको पराया जानकर छोड़ देता है, अपने स्वभाव के अतिरिक्त जो कुछ है सबको पराया जान करके छोड़ देता है। ये हो सकता है कि जानने में और छोड़ने में थोड़ा समय का अंतराल हो जाए, जैसे मान लो 2 भाई हैं, उन 2 भाइयों में से 1 भाई ने दूसरे का शर्ट पहन लिया, अब दूसरा अपना शर्ट ढूंढने लगता है, मेरा शर्ट कहाँ गया, मेरा शर्ट कहाँ गया, और फिर जिसने पहना है उसको ख्याल नहीं है कि ये उसका है, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है अरे मैंने पहन लिया, उसको तुरंत छोड़ देता है। बस ये ज्ञान ही त्याग है, जैसे ही जाना कि मेरा नहीं है वैसे ही धारणा से तो छूट गया ना कि मेरा नहीं है, मेरा है ये धारणा तो छूटेगी नहीं, तुरंत छूट गई। जैसे ही जाना कि मेरा नहीं है वैसे ही मेरा है ये धारणा छूट गई। तो इसीलिए ज्ञान ही त्याग है, और इसमें आचार्य अमृतचंद स्वामी ने दृष्टांत दिया है कि धोबी के यहाँ से एक रजक के यहाँ से किसी के वस्त्र बदल गए भूल से। अब बदलने के बाद जब उस वस्त्र का स्वामी आता है तब उसको अपनी भूल समझ में आती है। वो बताता है कि अमुक व्यक्ति तुम्हारे वस्त्र ले गया है। ये कहता है कि कोई बात नहीं, वो तो मेरा मित्र है, मैं उसके पास से ले लेता हूँ। वो जाता है लेने तो वो सोया होता है, उसी वस्त्र को धारण करके वो सोया होता है। तो ये उसको जगाता है, जगा कर कहता है, अब वो कुछ कहने वाला था तो फिर वो जागने वाला कहता है कि क्यों जगाया। ये बोलता है कि भूल से कपड़े बदल गए हैं, मेरे कपड़े तुम्हारे पास आ गए हैं। वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे हैं मेरे हैं। ये स्थिति आती है, एकदम तत्व का उपदेश दो तो फिर अंदर से जो पुरानी धारणाएं हैं वो चिल्ला पड़ती है कि नहीं 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 नहीं, ये आत्मा नहीं चाहिए मुझे, मोक्ष नहीं चाहिए, संवर नहीं चाहिए, निर्जरा नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी बातें अंदर से निकलती है क्योंकि कर्मों को डर लगता है ना, कर्मों को तत्व ज्ञान से डर लगता है, चिल्ला पड़ते हैं। तो फिर उसको फिर समझाना पड़ता है, चिल्लाओ ना, बुंदेलखंड में उड़ते गम खाओ, साता पकड़ो, शांति रखो, समझाते हैं उसको। तो वो मित्र भी उसको समझाता है कि देख तेरे कपड़ों में ये किनारी ऐसे रंग की है क्या। वो कहता है कि ऐसा ही है मेरा कपड़ा, किनारी ऐसे रंग की है क्या। नहीं, धीरे से बोलता है नहीं। फिर और भी उसको समझाते हैं और समझा समझा करके जब उसका हृदय स्वीकार कर लेता है कि नहीं वास्तव में ये चीज तो मेरी नहीं है, तो उसी समय ये मेरा है इस भाव का त्याग हो जाता है। और वो कहता है कि अब भी देता हूं, बस देने के लिए तैयार हो जाता है, त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। तो जानना ही त्याग है। इसी प्रकार गुरु जब उसको समझाते हैं कि तू ये नहीं है, अरे नहीं नहीं मैं तो यही हूं, अभी बोला था ना उससे पहले भी, अगर मैं ये नहीं होता तो फिर तीर्थंकरों के शरीर की स्तुति कैसे होती, इसलिए शरीर और आत्मा एक है। आचार्य भगवंत ने समझाया कि नहीं, वो व्यवहार कथन है, निश्चय से आत्मा और देह एक नहीं है। इस प्रकार समझाने के बाद उसको ये स्वीकार हो जाता है कि नहीं सही बात है, एक तो नहीं, क्योंकि चिन्हों से पहचान बतलाने के बाद में तो क्लियर हो जाता है कि देखो ये लाल किनारी, लाल किनारी का मतलब मेरा रंग जो था, मेरे वस्त्र का जो रंग था वो तो दूसरा था, ये लाल किनारी वाला मेरा वस्त्र नहीं। इसी प्रकार यहां बतला दिया हमने, ये शरीर भी तो वस्त्र है ना, तो उसको पहन करके ये आत्मा सोया हुआ, तो गुरु ने जगाया कि देख तू क्या किसके कपड़े पहन करके सो गया। वो कहता है नहीं मेरे मेरे मेरे, नहीं तेरे नहीं है, देख इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, तेरे में ज्ञान दर्शन। तो इस प्रकार भेद कराने के बाद वो स्वीकार कर लेते हैं, नहीं ठीक ठीक है ये मेरे कपड़े नहीं है, मैं अब इसको उतारता हूं। कैसे उतारोगे, वो अंदर उस रूम में जाकर के उतारूंगा, यहां बाहर नहीं उतारूंगा। कौन से रूम में, रत्नत्रय के रूम में जाकर इस शरीर रूपी और कर्म रूपी वस्त्र को मैं उतारूंगा। शरीर जो है बाहर के वस्त्र है और फिर कर्म जो है वो अंदर के वस्त्र है, अंडर गारमेंट्स जिसको बोलते हैं, अंदर के होशियारी वगैरह। तो इन सबको उतार कर मैं अब अपना ही वस्त्र धारण करूंगा, सिद्ध पद का चोला मैं स्वीकार करूंगा। तो मुनि पद अंगीकार करने का अर्थ क्या है कि मनुष्य पर्याय के चौराहे पर जंक्शन पर जो जीव आया, कालूपुर में बहुत बड़ा जंक्शन है, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, कहाँ कहाँ ट्रेन जाती है, दिल्ली जाती है, जयपुर जाती है, मुंबई जाती है, सब जगह जाती है। वैसे ही ये मनुष्य भाव जो अपने को प्राप्त हुआ वो अहमदाबाद जंक्शन के समान था, पर गलत ट्रेन पकड़ करके अपन यहां तक चले आए। तो मुनि दीक्षा लेते समय उस वापस उस ट्रेन स्टेशन पर जाते हैं। वापस स्टेशन पर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? अभी ये जो दूसरे टिकट विकेट लेकर के अपन कहीं से कहीं आगे निकल गए ना, तो वापस वहां लौटना पड़ता है स्टेशन पर। स्टेशन पर लौटने के लिए जैसे स्टेशन पर आए थे ना, वैसी ही दशा को प्राप्त करना पड़ता है। क्या मतलब? कि जब मनुष्य भाव के स्टेशन पर आए थे तब कुछ लेकर नहीं आए थे, तब जो कुछ भी लेकर रखा है उसको अलग करो। तो निर्गुण बालक जैसे नग्न रूप को धारण कर लिया, वापस स्टेशन पर आ गए, आ गए ना। अब सही ट्रेन को पकड़ो, राग द्वेष मोह की ट्रेन को छोड़ो और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की ट्रेन में बैठ जाओ। अब तुम्हारी जो मंजिल है मोक्ष नगरी, वहां ले जाएगी ट्रेन। बेफिक्र हो जाओ, आराम से बिल्कुल ध्यान में बैठे रहो, सो जाओ अंदर आत्मा में जाकर के, बिल्कुल लीन हो जाओ। जावाणी के ज्ञान से
सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक जो सदा देखूं हो। एक दिन वाणी मारती तो जगो जिन चुछे
इस ग्रंथ की तो बात कुछ निराली लगती है।